तो हम वाल्मीकि रामायण से कुछ कथा श्रवण करेंगे। तो ये राम के राज्य की एक घटना है जिसमें एक कुत्ते ने न्याय मांगा भगवान राम से। तो आप ध्यान से सुनिए ये कैसी घटना है। तो भगवान राम के राज्य में प्रजा कितनी सुखी थी, एक कुत्ते का भी कष्ट भगवान दूर कर रहे हैं। आप सोचिए कि कितने लोग सुखी थे राम के राज्य में। तो एक घटना, भगवान रामचंद्र राजधर्म का पालन करने के लिए ब्राह्मणों के साथ सभा में उपस्थित हुए और अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। तदा प्रभाते विमलिन कृत्वा कौरवाणि की क्रियाम धर्मासन गतो राजा रामो राजीव लोचनाम राजधर्मान वेक्षण ब्राह्मणे गमेश क्रोध सा वशिष्ठेन ऋषिणा कश्यपेन च। उस समय भगवान राम के दरबार में कौन से ब्राह्मण थे, वशिष्ठ कश्यप जैसे महान ब्राह्मण थे, और उनकी सभा में मंत्री कैसे थे, सब प्रकार के व्यवहार का ज्ञान रखने वाले मंत्री थे, और विद्वान कैसे थे, धर्मशास्त्र का पाठ करने वाले विद्वान थे, और राजा भी थे, अनेक राजा थे। कैसे राजा थे, नीति के राजा, सब प्रकार की नीति जानने वाले थे। ऐसे सभी सभासद उस सभा में बैठे थे। मंत्र फिर से विहार तथा धर्म पाठ नीतिज्ञ रथ सभ्य राजवेता सभा मृतान। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम की वह सभा इंद्र के समान या यम या वरुण के सभा के समान शोभा पाती थी। सभायता महेन्द्र यमस्य वरुणस्य च सुखदे राज सिंहस्य रामस्य निश्चय कर्मणः। वहां बैठे हुए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा। अब भगवान राम लक्ष्मण से क्या कहते हैं कि सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण, तुम बाहर निकलो और देखो कि कौन कौन से दुखी लोग उपस्थित हैं। सुमित्रा कुमार, तुम उन दुखियों को बारी बारी से बुलाना आरंभ करो। किसी को कोई शिकायत है, कोई कष्ट है, उनको बुलाओ। अथ रामो ब्रवी तत्र लक्ष्मणम शुभ लक्षणम निर्गच्छतम महाबाहो सुमित्रानंद वर्धन कार्यार्थिनश्च सौमित्रीं व्याहर्तुं त्वम् उपाक्रम। रामचंद्र जी का ये आदेश सुनकर लक्ष्मण ने द्वार पर आकर स्वयं ही कार्यार्थियों को पुकारा, स्वयं पुकारा कि किसका कष्ट है, किसको मिलना है राजा राम से। परंतु कोई भी वहां ये नहीं कह सका कि मुझे यहाँ कोई कार्य है, कोई कष्ट है। देखिए वो कहते हैं, भगवान राम कहते हैं बुलाओ किसी को कोई कष्ट हो, कोई किसी को कोई कष्ट नहीं है उनके राज्य में। रामस्य भाषितम श्रुत्वा लक्ष्मण शुभ लक्षण द्वारके समुपागम्य कार्यम ब्रवी तत्र मम कार्यम जय। श्री राम के राज्य शासन करते समय ना तो कहीं किसी को शारीरिक रोग होते थे, देखिए कोई रोग नहीं थे। ऐसी सरकार है, सरकार का ये मतलब होता है ये क्या सरकार है, यहाँ कितनी बीमारियां, कितने अस्पताल खोले हैं। सरकार ऐसी होनी चाहिए, एक भी अस्पताल नहीं, कोई बीमार नहीं, न मानसिक चिंताएं सताती थी, पृथ्वी पर सब प्रकार की औषधियां उत्पन्न होती थी और पकी हुई खेती शोभा पाती थी। नाथयो व्याधयश्चैवं रामे राज्यं प्रशासति पत्कुटस्या वसुमती सर्वौषधि समन्विताम्। और क्या विशेषता है राम के राज्य की है? आप लोग सुनिए ध्यान से, श्री राम के राज्य में ना तो बालक की मृत्यु होती थी। अभी आजकल देखो कितने बच्चे मरते हैं, और जो नहीं मरते हैं उनको मारा जाता है, गर्भ के अंदर बच्चों को मारा जाता है ना। लेकिन राम के राज्य में किसी बालक की मृत्यु नहीं होती थी, ना किसी युवक की मृत्यु होती थी। बचपन में किसी की मृत्यु नहीं होती, न जवानी में किसी की मृत्यु होती थी, न मध्यम अवस्था के पुरुष की मृत्यु होती थी। जवानी के बाद मध्यम अवस्था होती है। मध्यम अवस्था मतलब जहाँ ना तो शरीर बढ़े और ना घटे, वो मध्यम अवस्था कहलाती है। जवानी में शरीर बढ़ता है और मध्यम अवस्था में शरीर रुक जाता है, ना बढ़ता है ना घटता है। तो उस अवस्था में भी किसी की मृत्यु नहीं होती थी। सबका धर्म पूर्वक शासन होता था, किसी के सामने कभी कोई बाधा नहीं आती थी, कोई बाधा नहीं। न बालो मृते तत्र न युवा न च मध्यम धर्मे अनशासितं सर्वं न च बाधा विधीयते। श्री राम के राज्य शासन काल में कभी कोई दुखी दिखाई नहीं देता था कि कोई केस चलाए, किसी प्रकार का केस होता नहीं था, है ना। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी को राज्य की ऐसी स्थिति बतलाई। लक्ष्मण जी ने क्या कहा? हाथ जोड़ करके भगवान राम से कहा कि प्रभु आपके राज्य में किसी को कोई तकलीफ नहीं है। मैं द्वार पर गया, मैंने पुकारा भी, मैंने किसी ने नहीं कहा कि किसी को कोई तकलीफ है। आपके राज्य में किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ये आपके राज्य की कमी है। राम के राज्य की कमी ये थी कि किसी को कोई तकलीफ ही नहीं होती थी, कोई केस ही नहीं चलता था, कोर्ट केस चलते ही नहीं। ये राम के राज्य की कमी है। लक्ष्मण से कोई डॉक्टर नहीं मिलते, कोई रोगी नहीं मिलता, कोई अस्पताल नहीं खुलते, ये राम के राज्य की कमी है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं राम से क्या के राज्य में बहुत बड़ी कमी है, है? कोई दुखी नहीं है, कोई रोगी नहीं है। दृष्टते न च कार्यासी रामे राज्यं प्रशासति लक्ष्मण प्रांजनिर्भूत्वा रामाय एवं निवेदयन्। अब प्रसन्न चित हुए श्री राम ने सुमित्रा कुमार से पुनः इस प्रकार कहा। सुमित्रा कुमार मतलब लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम फिर जाओ और कार्यार्थी पुरुषों का पता लगाओ, ना? कोई नहीं आ रहा है तो पता लगाओ, पता लगाओ कि किसी को कुछ दुख है, कुछ तकलीफ है, खोजो, पता लगाओ। अधराम प्रसन्न आत्मा कौमित्रीदमी भूय एव तु गच्छतम कार्यण प्रविचारये। भली भांति उत्तम नीति का प्रयोग करने से राज्य में कहीं अधर्म नहीं रह जाता है, अतः सभी लोग राजा के भय से यहाँ एक दूसरे की रक्षा करते हैं। सम्यक प्रणीतया नीत्या न धर्मो विद्यते क्वचित् तस्मान् राजभयात् सर्वे रक्षन्ति है परस्परम्। यद्यपि राज कर्मचारी मेरे छोड़े हुए बाणों के समान यहाँ प्रजा की रक्षा करते हैं, तथापि महाबाहो तुम स्वयं भी तत्पर रहकर प्रजा का पालन किया करो। बाणा इवे मया मुक्ता यह रक्षन्ति मे प्रजा तथापि महाबाहो प्रजा रक्षत्व तत्परः। श्री राम के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण राजभवन से बाहर निकले। बाहर आकर उन्होंने देखा द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है जो उन्हीं की ओर देखता हुआ बारंबार भूख रहा है। उसे इस प्रकार देखकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उससे पूछा, देखा बाहर एक कुत्ता खड़ा है, हरे कृष्णा, बाहर एक कुत्ता खड़ा है और भूख रहा है। तो लक्ष्मण जी ने उस कुत्ते से पूछा, एवं मुक्तस्तु सौमित्र निर्जगामे नेपालयात् अपश्यन् द्वारदेशे वयम् स्वानम् तावन्नवस्थितम् तमेव वीक्षमाणम् वयम् विक्रोशम् तम् मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा च लक्ष्मणस्तम् वयम् तपप्रख्यात वीर्यवान्। अब लक्ष्मण जी उस कुत्ते से पूछ रहे हैं, देखिए एक कुत्ते पर भी ध्यान दिया जा रहा है, कुत्ते को कोई कष्ट है? महाभाग तुम निर्भय होकर बताओ तुम्हारा क्या काम है। लक्ष्मण जी का ये वचन सुनकर कुत्ते ने कहा, किंते कार्यम महाभागम दो ही विश्रद्ध मानसा लक्ष्मण सहवचा सार में योग्य भाषद। अब कुत्ता क्या कहता है, जो सबको शरण देने वाले और क्लेश रहित कर्म करने वाले हैं और भय सबके भय को दूर करते हैं, उन भगवान श्री राम के सामने ही मैं अपना दुख बता सकता हूँ। सर्वभूत शरण्याय रामाया कृष्ण कर्मणे भय तो भयदात्रे का तस्मै वक्तुं समुत्सहे। अब कुत्ते की ये बात सुनकर लक्ष्मण ने श्री राम को इसकी सूचना देने के लिए सुंदर राजभवन में प्रवेश किया। देखा लक्ष्मण जी दूसरी बार वापस लौटे हैं राम के पास। पहले बार आए कहा कोई नहीं है, दूसरी बार फिर आए और कुत्ते से पूछा, कुत्ते ने कहा कि मैं राम को ही बता सकता हूँ, तो फिर राम के पास है, दूसरी बार राम के पास वापस आए। वचनम तारने लक्ष्मण राघवाय तदाख्यातम प्रभवेशालयम शुभम। श्री राम को उसकी बात बताकर लक्ष्मण पुनः राजभवन से बाहर निकल आए और उससे बोले, यदि तुम्हें कुछ कहना है तो चलकर राजा से ही कहो। निवेद्य रामस्य पुनर् निर्जगामे नेपालयात् वक्तव्यं निविते किंचन तत्त्वं ब्रूहि नेपायवेन। अब लक्ष्मण जी तीसरी बार आए, तीसरी बार बाहर आए हैं और कुत्ते से कहते हैं कि राजा से कहो आ जाओ अंदर। तो लक्ष्मण की बात सुनकर कुत्ता बोला, सुमित्रा नंदन कुत्ते के लिए मनाही है, कहा मंदिर के अंदर जाना और राजभवन में जाना या ब्राह्मण के घर में या अग्नि इंद्र सूर्य वायु इन स्थानों में कुत्ते के लिए जाना मना है। तो हम अदम योनि के जीव हैं, तो अपनी इच्छा से वहां जा नहीं सकते हैं। अब देखिए लक्ष्मण जी को कितने बार आना जाना पड़ रहा है, तीसरी बार आए हैं, पहली बार आए कोई नहीं है, वापस गए राम के पास, दूसरी बार आए कुत्ते से पूछा क्या तकलीफ है, उसने कहा राम को ही बताएंगे, अंदर गए, फिर तीसरी बार फिर आए और बोले चलो अंदर, तो कुत्ता कहता है कि हमको तो मना ही है, अपनी इच्छा से हम नहीं जा सकते। लक्ष्मण से बचा कृष्ण सार में योग्य भाषत देवागारे नेपागारे द्विज भीष्म सुवह तथा वहनी सत्य क्रतुश्च सूर्यो वायुस्तति ना प्रयोग्यास्तु सौमित्री योनी नाम अधमा अधमा वयम। मैं इस राजभवन में प्रवेश नहीं कर सकूंगा क्योंकि राजा श्री राम धर्म की मूर्ति हैं, वे सत्यवादी हैं, संग्राम कुशल हैं और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। कुत्ता कह रहा है कि मैं नहीं जा सकता। अभी देखो तीसरी बार लक्ष्मण जी आए हैं और कुत्ता कह रहा है मैं नहीं जा सकता हूँ। प्रवेश तुम नात्र सत्यामि धर्मो विग्रहवान सत्यवादी रणपटु सर्व सत्वो हिते रतहां। कुत्ता कह रहा है कि श्री राम सब प्रकार के गुणों के प्रयोग के अवसरों को जानते हैं, वे न्याय करने वाले हैं, वे सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं। श्री राम दूसरों के मन को आनंद देने में पुरुष श्रेष्ठ है। सात गुण पदम वेती नीति करता राघव
सर्वज्ञः सर्वदर्शी च रामो रमयताम वरहान।
श्री राम ही चंद्रमा है, श्री राम मृत्यु है, वे यम है, कुबेर है, अग्नि, इंद्र, सूर्य और वरुण सब कुछ है।
सतामासा च मृत्युस्तां स्वयमोदन चतुश्चैव सूर्यो में वरुणस्तथां।
सुमित्रानंदन, श्री रघुनाथ जी प्रजा पालक हैं, आप उनसे कहिए मैं उनकी आज्ञा प्राप्त किए बिना इस भवन में प्रवेश करना नहीं चाहता।
सत्यम रोये सौमित्री प्रजापालो राघव अनाज्ञप्तस्तु सौमित्रे प्रवेश नेच्छयाम्यहम्।
ये सुनकर महातेजस्वी महाभाग लक्ष्मण ने दयावश राजभवन में प्रवेश करके कहा। तीसरी बार आए राम के पास।
अब राम से क्या बोले?
कौशल्य का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री राम, मेरा ये निवेदन सुनिए, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार मैंने बाहर जाकर कार्यार्थी को पुकारा।
श्रोयतां मम विज्ञाप्यम कौशल्यानं निवर्धन जन्मयोक्तम महाबाहो सवितासमिजं दिवो।
इस समय आपके द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है जो कार्यार्थी होकर आया है। लक्ष्मण की यह बात सुनकर श्री राम ने कहा, यहाँ जो भी कार्यार्थी होकर खड़ा है उसे शीघ्र इस सभा के भीतर ले आओ।
स्वावैते छते द्वारी कार्यार्थी समुपागत लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा रामो वचनम अब्रवीन संप्रवेश क्षेत्रम कार्यार्थी योत्र तिष्ठति।
अब सुनिए ध्यान से आगे क्या हुआ। श्री राम का ये वचन सुनकर बुद्धिमान लक्ष्मण ने तत्काल उस कुत्ते को बुलाया और श्री राम को उसके आने की सूचना दी।
श्रुत्वा रामस्य वचनम लक्ष्मणस्तरे तत्तदा स्वानमाहूय मतिमान राघवाय निवेदयन।
वहाँ आए हुए कुत्ते की ओर देखकर श्री राम ने कहा, हे कुत्ते, तुम्हें जो कुछ कहना है उसे मेरे सामने कहो, यहाँ तुम्हें कोई भय नहीं है। तुम्हें कोई भगाने वाला नहीं है, तुम्हें जो कुछ कहना है बताओ, अपनी बात निर्भय होकर के बताओ।
दृष्ट्वा समागतम स्वानम रामो वचनम अब्रवीत विवक्षितार्थम मे द्रोहे सारमेय न ते भयम्।
कुत्ते का मस्तक फट गया था, कुत्ते का मस्तक फट गया था। उसने राजसभा में बैठे हुए महाराज श्री राम की ओर देखा और देखकर इस प्रकार कहा,
अथापत तत्प्रस्थम रामम स्वाभिन्न मस्तक ततो दृष्ट्वा स राजानम सारमेयो ब्रवीन वचहां।
अब कुत्ता क्या कहता है, राजा ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाला है और रक्षा करने वाला है। राजा सबके सोते रहने पर भी जागता है और प्रजा का पालन करता है।
राजैव कर्ता भूतानां राजा च विनायकः राजा सुप्ते सुजागर्ति राजा पालयति प्रजां।
राजा सबका रक्षक है, वह उत्तम नीति का प्रयोग करके सबकी रक्षा करता है। यदि राजा पालन ना करे तो समस्त प्रजा शीघ्र ही नष्ट हो जाती है।
नित्या संतया राजा धर्मं रक्षति रक्षिता यदा न पालयेन राजा क्षिप्रम नश्यन्ति वे प्रजा।
राजा ही करता है, राजा ही रक्षक है और राजा संपूर्ण जगत का पिता है। राजा काल है, राजा ही युग है और राजा ही ये संपूर्ण जगत है।
राजा कर्ता च गुप्ता च सर्वज्ञ जगतः पिता राजा कालो युगम चैवम राजा सर्वमिदं जगन्।
धर्म संपूर्ण जगत को धारण करता है, इसीलिए उसका नाम धर्म है। धर्म ने ही
समस्त प्रजा को धारण कर रखा है, क्योंकि वही चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी का आधार है। कौन कह रहा है? कुत्ता कह रहा है। धारणान धर्मम नित्याहुर धर्मेण विदुता प्रजा धर्मेण विद्रता प्रजा यस्मान धारयते सर्वम त्रैलोक्यम साचराचरम।
राजा अपने द्रोहियों को भी धारण करता है, या दुष्टों को भी मर्यादा में स्थापित करता है, और वह धर्म के द्वारा प्रजा को प्रसन्न रखता है, इसलिए उसके शासन रूप कर्म को धारण कहा गया है, और धारण ही धर्म है, ये शास्त्र का सिद्धांत है।
धारणान विद्युषाम चैवं धर्मेणारंजयन प्रजा तस्मान धारण मित्युक्तम सधर्म इति निश्चय।
रघुनंदन, ये प्रजा पालन रूप परम धर्म राजा को परलोक में उत्तम फल देने वाला होता है। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि धर्म से कुछ भी दुर्लभ नहीं है।
एत राजन परो धर्म फलवान प्रेत्य राघव नहीं धर्मान भवेत किंचन दुष्प्रापम मिति में मति।
श्री राम दान दया सत्पुरुषों का सम्मान और व्यवहार में सरलता ये परम धर्म है, प्रजा की रक्षा से होने वाला उत्कृष्ट धर्म इस लोक और परलोक में भी सुख देने वाला होता है।
दानम दया सताम पूजा व्यवहार सुचारम एस रामे परो धर्मो रक्षणा प्रेतम।
उत्तम व्रत का पालन करने वाले रघुनंदन, आप समस्त प्रमाणों के भी प्रमाण हैं। सत्पुरुषों ने जिस धर्म का आचरण किया है वह आपको भली भांति मालूम है।
तम प्रमाणम प्रमाणानाम अति राघव सुदत विदितस्यते धर्मम तद्भिराचरितस्तु वयम्।
राजन, आप धर्मों के परम धाम और गुणों के सागर हैं। निदृष्ट, मैंने अज्ञानवश ही आपके सामने धर्म की व्याख्या की है। हाँ, ये भी कुत्ता कह रहा है, ठीक कह रहा है, क्योंकि आप तो सबको जानते हैं कि मेरा ज्ञान है कि मैं आपके सामने व्याख्या कर रहा हूँ धर्म की।
धर्माणाम तम परम धाम गुणानाम सागरोपमान अज्ञानाच्च मया राजन उक्त तुम राज सत्तम।
इसके लिए मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर क्षमा चाहता और आपके प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। किस बात के लिए क्षमा मांग रहा है कुत्ता? कि धर्म की व्याख्या की आपके सामने है ना, और आपको प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप यहाँ मुझ पर कुपित ना हो। कुत्ते की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी बोले,
प्रसादयामी सिरसा तुम को धुम निहारती सुना था वचनम श्रोता राघवो वाक्यम प्रवीण।
अब राम क्या बोले, तुम निर्भय होकर बताओ आज मैं तुम्हारा कौन सा कार्य पूरा करूं, अपना काम बताने में विलम्ब ना करो, देर मत लगाओ, बताओ जल्दी तुम्हारा क्या काम है।
श्री राम की यह बात सुनकर कुत्ता बोला, किंते कार्यम करोम यज्ञ द्रोहित श्रद्ध माचिर रामस्य वचनम श्रुता सारमय योग विदिनम।
अब कुत्ता क्या बोला, रघुनंदन राजा धर्म से ही राज्य प्राप्त करे और धर्म से ही निरंतर उसका पालन करे, धर्म से ही राजा सबको शरण देने वाला और सबका भय दूर करने वाला होता है, ऐसा जानकर आप मेरा जो कार्य है उसे सुनिए।
धर्मेण राष्ट्रम विंदेत धर्मेण अनुपालये धर्माचरण्यताम ज्ञाति राजा सर्व भयापहम इदम विज्ञायत्यम श्रूयताम मम राघव।
प्रभु, सर्वार्थ सिद्ध नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है। क्या नाम है ब्राह्मण का? सर्वार्थ सिद्ध, जो ब्राह्मणों के घर में रहा करता है, उसने आज बिना किसी कारण मुझ पर प्रहार किया है। मैंने उसका कोई अपराध नहीं किया था।
भिक्षु सर्वार्थ सिद्ध ब्राह्मणो वसते स्मतम तेन दत्ता प्रहारो में निस्कारणम मनागत।
देखो कुत्ते ने जैसे ही शिकायत की तुरंत राम ने एक्शन दिया है। राम कुत्ते की ये बात सुनकर श्री राम ने तत्काल एक द्वारपाल भेजा और उस सर्वान प्रसिद्ध नामक विद्वान भिक्षु ब्राह्मण को बुलवाया। तुरंत कुत्ते के सामने ही बुलाया है कि आओ बताओ क्या क्यों मारा तुमने।
ये तत्कृत्वा तो रामेण द्वारपालं प्रेषितं तदा आनीत साधुजस्तेन सर्व सर्वान् सर्व सिद्धार्थ कोविदः।
श्री राम को देखकर उस महातेजस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पूछा, निष्पाप रघुनंदन मुझसे आपको क्या काम है।
अथ द्वितीय वर्ष सत्र रामम दृष्ट्वा महाजुति किम ते कार्यम मया राम तंद्रोहे ममानघ।
ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर श्री राम बोले, ब्राह्मण आपने इस कुत्ते के सिर पर जो यह प्रहार किया है उसका क्या कारण है। विप्रवर इसने आपका क्या अपराध किया था जिसके कारण आपने इसे डंडा मारा है।
एवमुक्तस्तु विप्रेण रामो वचनम अब्रवीत त्वया दत्तः प्रहारोऽयम् तारमेयस्य वैदिजः किं तवापः कृतं मित्र दण्डेनाभिहतो यतः।
तो राम क्या कह रहे हैं, क्रोध प्राण हरि शत्रु है, क्रोध को मित्रमुख शत्रु बताया गया है। मित्रमुख शत्रु मतलब दिखाई देता है मित्र के समान क्रोध, जबकि होता है बड़ा शत्रु।
गीता में भी भगवान ने कहा है कि क्रोध ही पाप कराने वाला शत्रु है, यह काम ही क्रोध का रूप धारण करता है।
अत्यंत तीखी तलवार है और क्रोध सारे सद्गुणों को खींच लेता है।
क्रोधा प्राणहरा शत्रु क्रोधो मित्र मुखो रिपु क्रोधो यतिर महातीक्ष्णाम सर्व क्रोधो पै कर सती।
मनुष्य जो तप करता यज्ञ करता और दान देता है उन सब के पुण्य को वह क्रोध के द्वारा नष्ट कर देता है, इसलिए क्रोध को त्याग देना चाहिए। बहुत अच्छा बता रहे, आपकी तपस्या है यज्ञ दान जो कुछ भी है क्रोध के द्वारा नष्ट हो जाएगा। तुम
तपते यजते चैव यज्ञदानं प्रयच्छति क्रोधेन सर्वं हरति तस्मात् क्रोधं विसर्जयेत्।
दुष्ट घोड़ों की तरह विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों को उन विषयों की ओर चहराकर धैर्य पूर्वक उन्हें नियंत्रण में रखे।
इंद्रियाणाम प्रदुष्टानाम हयानाम धावताम पूर्वीत धृत्या सारथ्यम संगृत्ये इंद्रिय गोचरम।
मनुष्य को चाहिए कि वे अपने पास विचरने वाले लोगों की मन वाणी क्रिया और दृष्टि द्वारा भलाई ही करे, किसी से द्वेष ना रखे, ऐसा करने से वह पाप से लिप्त नहीं होता है। कैसे भलाई करे, मन से वाणी से क्रिया से और दृष्टि से। दृष्टि से भी भला कर सकते आप और दृष्टि से बुरा भी कर सकते। देखने की जो देखने का तरीका होता है ना, इससे भी आप किसी को बहुत दुख पहुंचा सकते हो, है ना। ऐसा करने से वह पाप से लिप्त नहीं होता।
मनसा कर्मणा वाचा चक्षुषा च समाचरेत् श्रेयो लोकस्य चरतो न ब्लेति न गलिप्यते।
अपना दुष्ट मन जो अनिष्ट कर सकता है वैसा तीखी तलवार भी नहीं कर सकती। आपका जो दुष्ट मन जितना नुकसान करेगा तीखी तलवार से भी उतना नुकसान नहीं हो सकता, या कुचला हुआ सर्प पैरों से कुचला सर्प भी उतना नुकसान नहीं कर सकता जितना नुकसान आपका दुष्ट मन कर सकता है। सदा क्रोध में रहने वाला शत्रु भी उतना नुकसान नहीं कर सकता जितना दुष्ट मन करता है।
न तत्कुरिया दसी तीक्षण सर्पो व्याहता पदा अरिर्वा नित्य संक्रोधो यथात्मा दुरनुस्थित।
जिसे विनय की शिक्षा मिली हो उसकी भी प्रकृति नई नहीं बनती है,
कोई अपनी दुष्ट प्रकृति को कितना ही क्यों न छिपाए, उसके कार्य में उसकी दुष्टता निश्चय ही प्रकट हो जाती है। विनीत विनीयस्यापि प्रकृतिर्ना विधीयते प्रकृतिम गृहमानस्य निश्चयेन कृतिर्ध्रुवम्। श्री राम के ऐसा कहने पर सर्वार्थ सिद्ध नामक ब्राह्मण ने उनके निकट इस प्रकार कहा, एव मुक्ता सविप्रो वे रामेण कृष्ट कर्मणा सर्वार्थ सिद्धस्तु अब्रवीत राम सन्निधौम। अब उस ब्राह्मण ने क्या कहा, प्रभु मेरा मन क्रोध से भर गया था इसलिए मैंने इसे डंडे से मारा है, भिक्षा का समय बीत चुका था तथापि भूखा रहने के कारण भिक्षा मांगने के लिए मैं द्वार द्वार घूम रहा था, ये कुत्ता बीत रास्ते में खड़ा था, मैंने बार बार कहा तुम रास्ते से हट जाओ हट जाओ, फिर ये अपनी मौत से चला और सड़क के बीच में बेढंगा बेढंगे खड़ा हो गया। मया दत्त प्रहारोयम क्रोधेन आविष्ट चेतसा भिक्षार्थम मतमानेन काले विरव भक्षकिन
भक्षासत स्वयं स्वावे गच्छ गच्छेति भासितः अथ परेण गच्छन्तु तस्यान्ते विषमं स्थितः
मैं भूखा तो था और क्रोध चढ़ाया, राजाधिराज रघुनंदन उस क्रोध से ही पीड़ित होकर मैंने इसके सिर पर डंडा मार दिया, मैं अपराधी हूँ आप मुझे दंड दीजिए। राजेंद्र आपके दंड मिल जाने पर मुझे नरक में जाने का डर नहीं रहेगा। क्रोधे न ततो दत्तो राघव प्रहारो राज राजेन्द्र साधि माम अपराधिनम प्रयास तत्व राजेन्द्र नास्ति मे नरकाभयम्। तब श्री राम ने सभी सभासदों से पूछा, आप लोग बतावें इसके लिए क्या करना चाहिए, इसे कौन सा दंड दिया जाए, क्योंकि भली भांति दंड का प्रयोग होने पर प्रजा सुरक्षित रहती है। अधरामेण संप्रिता सर्वे वै सभासदा किम कार्यम अस्य वै ब्रूत दंडो वै कोष्ठ पाठताम सम्यक प्रणीयते दंडे प्रजा भवति रक्षिता। उस सभा में
भृगु आंगिरस वशिष्ठ और कश्यप आदि मुनि थे, धर्म शास्त्रों का पाठ करने वाले मुख्य विद्वान उपस्थित थे, अनेक पंडित एकत्र थे, राजधर्मों में निपुण थे सभी विद्वान श्री रघुनाथ जी से बोले
निपुण थे। श्री रघुनाथ जी से बोले, ब्राह्मण दंड द्वारा आबद्ध है, ब्राह्मण को प्राण दंड तो नहीं दिया जा सकता, आबद्ध है, उसे शारीरिक दंड नहीं मिलना चाहिए, यही समस्त शास्त्रों का मत है, ब्राह्मण को शारीरिक दंड तो नहीं मिलना चाहिए। भिग्वांगिरस कुत्ताद्या वशिष्ठाचकाच्यप धर्म पाठक मुख्याचा सचिवान गथा एक चान्य सभावा पंडिता सत्र संगता अवध्यो ब्राह्मणो दंड इति शास्त्र विदो विदु ब्रभते राघव सर्वे राजधर्मेषु निस्थिताम्। तब ये सब मुनि उस समय श्री राम से ही बोले, रघुनंदन राजा सबका शासक होता है, विशेषता आप तो तीनों लोगों पर शासन करने वाले साक्षात सनातन देवता भगवान विष्णु हैं। ब्राह्मणों ने कहा, आप तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, तो आप ही निर्णय करो कि क्या दंड मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने निर्णय दे दिया कि क्या दंड नहीं मिलना चाहिए, शारीरिक दंड नहीं मिलना चाहिए, मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए, शारीरिक दंड नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आप क्या दंड मिलना चाहिए अब आप निर्णय करो। अतते मुनिया सर्वे रामम एवा ब्रुवन् तदा राजा सास्ता ही सर्वस्य संविशेषेण राघव त्रैलोक्यस्य भवान् सास्ता देवो विष्णु सनातन। उन सब के ऐसा कहने पर कुत्ता बोला, श्री राम यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं, यदि आपको मुझे क्षमसार वर देना है तो मेरी बात सुनिए। अब कुत्ता स्वयं कहता है कि अगर आप चाहते हो मेरी इच्छा के अनुसार कुछ वरदान देना तो मेरी बात सुनो। एवं मुक्त है तुत सर्व स्वामे वचन अब्रवीत यदि तुष्टोसि मे राम यदि देयो वरो मम। वीर नरेश्वर, आपने प्रतिज्ञा पूर्वक पूछा है कि मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। इस प्रकार आप मेरी इच्छा पूर्ण करने को प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके हैं, आप बोल चुके हैं कि आप मेरा काम करोगे। तब मुझे से पूछो और मैं ही बताता हूं कि आप क्या करो। अतः मैं कहता हूं कि इस ब्राह्मण को कुलपति बना दीजिए, कुलपति बना दो इस ब्राह्मण को। महाराज, इसे कालंजर में एक मठ का आधिपत्य प्रदान कर दीजिए। प्रतिज्ञातम प्रया वीर किम करोमीति विस्तृतम प्रयच्छ ब्राह्मणस्याच्छ कौलपत्यम नराधित कालंजरे महाराज कौलपत्यम प्रदीयताम। ये सुनकर श्री राम ने उसका कुलपति के पद पर अभिषेक कर दिया। ये दंड है, हा? क्या महंत बना दिया कालंजर के मठ का। ये दंड है ब्राह्मण को दिया। इस प्रकार पूजित हुआ वह ब्राह्मण हाथी की पीठ पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ वहां से चला गया। हर्ष के साथ चला गया। ये तत्वा दुरामेण कौलपत्य विशेषिता ब्राह्मणो दृष्टो प्रयो ब्राह्मणो हृष्टो गजस्कंधे न शोचिता। तब श्री रामचंद्र जी के मंत्री मुस्कुराते हुए बोले, महातेजस्वी महाराज, ये तो इसे भर दिया गया है या साप या दंड, ये तो इसे भर दिया गया है, साप या दंड तो नहीं दिया गया है। जब वो चला गया तो मंत्रों ने पूछा कि ये तो वरदान मिला इसको कि कुत्ते को मारा सिर में तो उसको वरदान मिला है, है? ये तो साप नहीं है, कोई दंड तो नहीं है। अथ तेरा मैं सचिवा इतना माना वचो ब्रवन परोयम दत्ता एतस्य नायम सापो महाजुते। मंत्रियों के ऐसा कहने पर श्री राम ने कहा, किस कर्म का क्या परिणाम होता है अथवा उससे जीवन की जीव की कैसी गति होती है इसका तक तो तुम लोग नहीं जानते। ब्राह्मण को मठाधीश का पद क्यों दिया गया इसका कारण ये कुत्ता जानता है। एवं मुक्तस्तु सचिव रामो वचनम अब्रवीत नयोयम् गते तत्प्रज्ञा स्वावै जानाति कारणम्। तत्पश्चात श्री राम के पूछने पर कुत्ते ने इस प्रकार कहा, अब राम ने पूछा कि कुत्ते ये बताओ तुमने उसको ये पुरस्कार क्यों दिया, तुम तो उसको दंड देना चाहते थे तो उसको तुमने कैलेंडर का कुलपति क्यों बनाया। तो कुत्ता कहता है, रघुनंदन मैं पहले जन्म में कैलेंडर के मठ में कुलपति था, पिछले जन्म में मैं कैलेंडर मठ का कुलपति था, वहाँ यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करता था, यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करता था। गीता में भगवान ने क्या कहा, यज्ञ शिष्ट अमृत भजो यहां से ब्रह्म सनातन। फिर कुत्ता कैसे बन गया, यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करता था और ब्राह्मणों की पूजा में तत्पर रहता था, दास दासियों को उनका न्यायोचित भाग बांट देता था, शुभ कार्यों में अनुरक्त रहता, देव संपत्ति की रक्षा करता और विनय शील से संपन्न होकर समस्त प्राणियों के हित साधन में संलग्न रहता था। अतः पृष्ठस्तु रामेण सारमेयो ब्रवीदिदम् अहम कुलपतिस्तत्र आसम सिस्तान भोजन देव दुजाति पूजायाम दासी दासे सुरागम संभागी सुभरतिन देव द्रव्यस्य रक्षिताम विनीता शील संपन्ना सर्व तत्व हिते रताम। तो भी मुझे ये घोर अवस्था एवं अधम गति प्राप्त हुई है, फिर भी मुझको कुत्ते का शरीर प्राप्त हुआ। फिर जो ऐसा क्रोधी है, धर्म को छोड़ चुका है, दूसरों के अहित में लगा हुआ है तथा क्रोध करने वाला क्रूर कठोर मूर्ख और अधर्मी है। वह ब्राह्मण तो मटादी होकर अपने साथ ही ऊपर और नीचे की सात सात पीढ़ियों को भी नरक में गिराकर ही रहेगा। तो हम प्राप्त इमाम घोराम अवस्थाम मतमाम गति एवं क्रोधान्वितो विप्रं त्यक्त धर्माहिते रताम क्रुद्धो निशंसा परुषं अविद्वान चाप्य धार्मिकाम कुलानी पापयत्येव सप्त सप्त च राघव। इसलिए किसी भी दशा में मठाधीश का पद नहीं ग्रहण करना चाहिए जिसे पुत्र पशु और बंधु बांधवों सहित नरक में गिरा देने की इच्छा हो उसे देवताओं गौओं और ब्राह्मणों का अधिष्ठाता बना दे। तस्मात् सर्वास्वस्थासु कौलपत्यं नकारयेत् यमिच्छेन् नरकं नेतुं सपुत्रः पशु बांधवम् देवेश दिशिरं कुर्यां गोधुचा ब्राह्मणे सुचां। जो ब्राह्मण का देवता का स्त्रियों का और बालकों का धन हर लेता है तरह जो अपनी दान की हुई संपत्ति को फिर वापस ले लेता है वह इस जनों सहित नष्ट हो जाता है। ब्रह्मत्वम देवता द्रव्यम स्त्री राम बाल धनम चयन दत्तम हरती अभूया रघुनंदन। जो ब्राह्मणों और देवताओं का द्रव्य हड़प लेता है वह शीघ्र ही अभिचि नामक घोर नरक में गिर जाता है। ब्राह्मण द्रव्य मागत्ते देवानाम से विरागव सद्या प्रति घोरे वरके जो देवता और ब्राह्मण की संपत्ति को ही हर लेने का विचार मन में लाता है वह नराधम में से ही एक नरक से दूसरे नरक में गिरता रहता है। मनसा ही देवस्यम ब्रह्मत्वं चारित्र्यं निर्यां निर्यम चतराधम। कुत्ते का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वह महातेजस्वी कुत्ता भी जिधर से आया था उधर ही चला गया। तत्कृत्वा वचनम रामो विस्मयो उत्पन्न लोचना स्वाप्य गच्छन् महातेजा यथैवागत सदा। इस प्रकार से हमने राम के राज्य में एक घटना का वर्णन किया है। इस घटना से क्या पता चलता है कि एक कुत्ते के भी सुनवाई होती है और कुत्ते से भी पूछा जाता है कि जिसने तुम्हारा अपराध किया है उसका दंड बताओ तुम क्या दंड देना चाहते हो। और कुत्ता भी जो ना सत्य बोलने वाला है और कुत्ता भी जो है राम का गुणगान करने वाला है। इससे क्या पता चलता है कुत्ते तक जो ना राम का गुणगान करते थे राम के राज्य में। ये विशेषता राम के राज्य की है। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि कुत्ता जो है पिछले जन्म में सालंजर के मठ का कुलपति था तो उसको फिर कुत्ता बनना पड़ा तो किस कारण से उसको कुत्ता बनना पड़ा। इनका प्रश्न ये है। हाँ पहला प्रश्न तो ये है कि किस कारण से उसको कुत्ता बनना पड़ा जबकि इसमें बताया गया है कि सब प्रकार की देखभाल करता था वो। इसमें लिखा है कि यज्ञ से समय का भोजन करता था तो यहाँ तो कोई कमी नहीं थी। कौन सा अन्न खाता था? जो भगवान को भोग लग चुका है वो अन्न खाता था। अच्छा और ब्राह्मणों की पूजा में तत्पर रहता था तो इसमें भी कोई कमी नहीं थी। ब्राह्मणों की पूजा में तत्पर रहता था। अच्छा और दास दासियों को उनका न्यायोचित भाग बांट देता था इसमें कोई कमी नहीं थी। और शुभ कर्मों में अनुरक्त रहता देव संपत्ति की रक्षा करता और विनय और चीन से संपन्न होकर समस्त प्राणियों के हित साधन में संलग्न रहता था। विनयशील से संपन्न था सब प्राणियों के साधन में लगे हुए हित साधन में लगे हुए अब कुत्ता क्यों बने? अब यहाँ पर कुत्ता बनने का जो कारण है वो एक ही है, वो क्या है कि मठ में जो रहने वाले हैं, मान लो दास दासी हैं, तो उनका जीवन पवित्र नहीं है, है? उनको मठ में है रख करके उनको सुविधा देना, आप समझे ना। मंदिर के भी जैसे अधिकारी हैं, है? कोई व्यक्ति मंदिर के नियमों का पालन नहीं करता है, है ना, और उसको जो है मंदिर में रखा जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसका कुत्ते जैसा जीवन है, मनुष्य के जीवन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है और उसको मंदिर में रखा जाता है, है? वो कुत्ते की तरह अगर आचरण कर रहा है ना, और उसको अगर आश्रय दिया जाता है तो वो बेसिक कुत्ता बनता है। जो व्यक्ति कुत्ते की तरह जीवन बिताता है, यानी जैसे व्यभिचार करता है ना, तो वो कुत्ता बनता है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू है ना, तो किसी ज्योतिषी ने बताया कि वो स्वीडन में कुत्ता बन गए, है ना। तो क्यों? क्योंकि पराई स्त्रियों से संबंध रखना एक कुत्ते जैसा जीवन है ना, तो कुत्ते बन गए। अच्छा, दूसरा व्यक्ति ऐसा तो नहीं है, बहुत पवित्र है, जैसे ये ब्राह्मण ऐसा नहीं था, इन ऐसे लोगों को उसने अगर आश्रय दिया था, उसको पता है कि ये व्यक्ति कुत्ते जैसा आचरण कर रहा है, तो भी उसने उस मठ में उसको जगह दी और सुविधाएं दी, सुख सुविधा, खाने सोने सबकी सुविधा दी, तो कुत्ते को आश्रय देने वाला भी कुत्ता, आप समझे ना। जैसे कि भरत महाराज ने हिरण को अपने आश्रम में जगह दिया, हिरण बन गए। आश्रम जो है ये हिरण को आश्रय देने के लिए नहीं होता है, आश्रम होता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, है ना। तो भरत महाराज ने हिरण की तरह कर्म नहीं किए, लेकिन हिरण क्यों बन गए? एक हिरण को आश्रय दिया। ऐसे ही कोई व्यक्ति कुत्ते की तरह कर्म करता है तो कुत्ता बनता है अगले जन्म में, और कोई व्यक्ति बहुत अपना पवित्र है, शुद्ध है, ब्राह्मण है, बहुत अच्छा है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन कुत्ते जैसे व्यक्ति को अगर आश्रय देता है, अपने साथ रखता है, तो भी कुत्ता बन जाएगा। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। इसलिए वैष्णव का आचरण क्या है? पहली बात है कि असत कर्म खुद न करे, और दूसरा व्यक्ति जो असत कर्म कर रहा है उसका भी संग न करे, उसको भी आश्रय न दे, है ना। तो यही जो है ना पता चलता है ना। तो इसलिए जो है मंदिर के अधिकारी, वो कुत्ता कह रहा है कि मंदिर के अधिकारी कभी नहीं बनना चाहिए, मंदिर के अधिकारी कभी नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ी समस्या होती है, अगर निकाला जाता है तो वो मंदिर बंद हो जाएगा, क्या किया जाए, और नहीं निकाला जाता है तो अपना कर्म भोगना पड़ता है, उस व्यक्ति का कर्म लेना पड़ता है। तो मंदिर के अधिकारी बनने के लिए बहुत जरूरी है कि भगवान से विशेष बुद्धि मांगे कोई व्यक्ति, कि मैं इस कर्म बंधन से किसी प्रकार से ना फंसूं, बहुत जरूरी है। हाँ, दूसरा प्रश्न इनका है कि जो दशरथ महाराज ने पुत्र यज्ञ किया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर कुछ गलती हो जाएगी यज्ञ में तो जो यजमान है, जो यज्ञ करने वाला है, वो ब्रह्म राक्षस बन सकता है। तो ब्रह्म राक्षस बनने का मतलब यही है जो ब्राह्मण भी हो और राक्षस भी हो, ठीक है ना। तो ब्राह्मण का कर्म कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, लेकिन दूषित कर्म भी साथ साथ कर रहा है और शुद्ध नहीं होता है, शुद्धता से कर्म नहीं कर रहा है, तो ब्रह्म राक्षस बन जाता है ना। जैसे ब्रह्म राक्षस है ना, जैसे ही महाभारत में आता है कि ब्रह्म राक्षस कैसे ब्रह्म राक्षस है, राक्षसों में ब्राह्मण, राक्षसों में ब्राह्मण, उसका नियम क्या था? एकादशी के दिन जो एकादशी का व्रत करे उसको ही खाएगा वो, एकादशी के दिन जो ना और किसी को नहीं खाता था, उसका बड़ा पक्का नियम था कि वो एकादशी के दिन जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करे उसी को खाएगा, तो बड़ा उसका मतलब कठोर नियम था। तो बड़ी तकलीफ भोगता था, क्योंकि हमेशा तो मिलते हैं ऐसे लोग जो एकादशी का व्रत करें तो और भी कई नियम उसने बताए हैं। कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ इतना नियम का पालन करता हूँ। तो ब्रह्म राक्षस का मतलब है कि है ब्राह्मण शास्त्र राक्षस भी है। उनका प्रश्न है कि जो दुरात्माएं हैं वो स्त्रियों के रूप में या ब्राह्मणों के रूप में आ रहे हैं। ब्राह्मणों के रूप में तो आ रहे हैं, ये जो है श्रीमद् भागवत में लिखा है कि नंदी का साप था, जो शिव जी के गण थे नंदी, उन्होंने साप दिया था दक्ष को, और भृगु जो दक्ष के सहयोगी थे उनको भी साप दिया था कि जो ब्राह्मण, ये ब्राह्मण जो है कर्मकांड में तो बहुत लगे रहते हैं लेकिन इनको आत्मज्ञान कुछ है ही नहीं, आत्मज्ञान में कोई लक्ष्य ही नहीं है इन लोगों को, तो ये लोग कर्मकांड में ही आसक्त रहेंगे या असत आचरण करने वाले होंगे। तो कलयुग में जो ना वो ब्राह्मण जो ना पैदा हो रहे हैं इस तरह से जो कि असत आचरण करते हैं, ठीक है। इसमें इनका प्रश्न है कि हमने पढ़ा था कि अगर किसी को नरक में भेजना हो तो ऐसा ऐसा करे। इसमें लिखा है तो कुत्ता कह रहा है कि जिसको अपने पुत्र पशु बंधु बांधवों सहित नरक में गिरने की इच्छा हो उसे देवताओं का गऊओं का ब्राह्मणों का आधे छाता बना दे। मतलब अगर आप चाहते हो किसी व्यक्ति को नरक में गिराना तो उसको आप जो है ना बड़ा पद दे दो, ये तो इस प्रकार से जो है कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करते हुए भी बुरे कर्म का फल लेता है अगर बुरे कर्मों को आश्रय देता है दया के नाम पर। एक बड़ी अच्छी बात दिलाई है तो बात से भी एक वो थे शिष्य थे मेरे ख्याल से बद्री नारायण प्रभु थे, बद्री नारायण प्रभु, उन्होंने बताया कि जब उनको न्यूयॉर्क का था प्रेसिडेंट बनाया था, न्यूयॉर्क मंदिर का प्रेसिडेंट बनाया था, तो जब प्रभुपाद जी वहाँ पर आए तो प्रभुपाद रुके थे तो उन्होंने पूछा कि जो मंदिर का प्रेसिडेंट है उसका मतलब क्या होता है प्रभुपाद। तो उन्होंने आशा की थी कि प्रभुपाद जी बड़ा गुणगान करेंगे कि मंदिर का जो प्रेसिडेंट होता है तो वो जो है गुरु परंपरा में उसका भगवान का प्रतिनिधि होता है, उसके आदेश का सब लोग पालन करते हैं, उसका सब लोग सम्मान करते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने ये उत्तर नहीं दिया, प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, मंदिर के अध्यक्ष का मतलब यही है कि मंदिर में जितनी भी गलतियां हो रही हैं उन सब के लिए वो जिम्मेदार हैं, कुलपति वही प्रेसिडेंट। तो मतलब ये है कि अगर उसके मंदिर में जो भक्त अच्छे हैं अच्छी प्रकार से भक्ति कर रहे हैं उसका भी फल ले रहा है, लेकिन जो अपराध कर रहे हैं और उनको भी अगर वो आश्रय दे रहा है तो उनका अपराध भी वो ले रहा है, निश्चित है। राजा की तरह है, इसलिए हंसने के लिए एक घटना है ना कि किसी ने बताई थी कि एक गधा था है ना, तो वो हमेशा सिर को ऐसे ऐसे हिलाता है, ऐसे ऐसे हिलाता है ना, तो सब लोग बड़े चकित हैं, कुछ भी बोलो अपने सिर को ऐसे हिलाएगा, मतलब जैसे हाँ के मुँह, मतलब ना करने के लिए कोई बात नहीं बोल रहा है। तो जब उससे ये पूछा गया कि तुम हरे कृष्णा मंदिर के प्रेसिडेंट बनोगे, तो फिर वो ऐसे ऐसे हिलाने लगा क्योंकि जानता है कि गधा क्यों बना, वो गधा क्यों बना है, मंदिर का प्रेसिडेंट था गधा बना, इसलिए वो उससे हिला रहा है कि मैं मंदिर का प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। श्री श्री राधा पार्थी ललिता विशाखा की, श्री श्री गोणताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राम आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की।